भाग विज्ञान नमोताहि जाति भये अर्हन्तादि यो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं तेषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितो उपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग पिछले दिनों से एक ही बात पर निरंतर विचार कर रहे हैं कि हमारा जीवन अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले हमें कैसे क्या करें हम जिससे कि हमारी दृष्टि निर्मल हो। दृष्टि की निर्मलता, ज्ञान की निर्मलता और आचरण की निर्मलता, ये तीनों मिलकर ही जीवन को अच्छा बनाते हैं। पर ज्ञान को और आचरण को निर्मल बनाने वाली दृष्टि की निर्मलता है। तीनों होना अनिवार्य है, लेकिन तीनों में से सबसे पहले दृष्टि की निर्मलता अनिवार्य है, क्योंकि उसके द्वारा ही हमारा ज्ञान निर्मल होता है, हमें ठीक ठीक समझ आना शुरू होती है, या कि हमारी जो समझ है वो ठीक हो जाती है दृष्टि की निर्मलता से। और हम आचरण तो पहले से भी करते रहते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उस आचरण में समीचीनता दृष्टि की निर्मलता से आती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी दृष्टि निर्मल हो। दृष्टि की निर्मलता के मायने क्या है? दृष्टि की निर्मलता के मायने हैं सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा। दृष्टि की निर्मलता के मायने हैं अपने आत्मा के स्वरूप में रुचि। दृष्टि की निर्मलता के मायने हैं पर पदार्थों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव। दृष्टि की निर्मलता के मायने हैं जो भगवान के द्वारा कहे गए सात तत्व हैं उनका मुझे समीचीन श्रद्धान होना चाहिए। यही दृष्टि की निर्मलता है, या ऐसा कहें कि जो चीज जैसी है उसे हम वैसा ही जानने लगते हैं या वैसा ही मानने लगते हैं, इसी का नाम दृष्टि की निर्मलता है। अभी तो हम अपने राग द्वेष के वशीभूत होकर जो चीज जैसी नहीं है उसे वैसा मान लेते हैं, जो चीज हमको दुखदाई है उसमें भी हम सुख मानते हैं, और जिस चीज में हमको सुख मिलता है उसे हम दुखदाई मान लेते हैं। आत्महित हेतु विराग ज्ञान तिलखे आंखों कष्टदान। आत्मा का जिसमें हित है ऐसे वैराग को हम कष्टप्रद मान लेते हैं। रोके न चाह निज शक्ति खोय शिव रूप निराकुलता न जो। ऐसे जो जीव है जीव के बारे में भी ऐसा ही है, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव मेरे ग्रह धन गोधन प्रभाव मेरे सुततीय मैं सबल दीन बेरूप सुगम मूरख प्रेम। तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको ना समान। ऐसा मैं जीव तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा ना जान करके अन्यथा जान लेता हूं, मैं शरीर को मैं ही मान करके इसके जन्म मरण में अपने ही जन्म मरण को मान लेता हूं, यह अजीव तत्व के बारे में भूल है। जिन राग द्वेष परिणामों से निरंतर आश्रय और बंध होता है मैं उन राग द्वेष परिणामों को अच्छा मान लेता हूं, और जिन वैराग्य के परिणाम से संवर और निर्जरा होती है जिस तपस्या के द्वारा निर्जरा होती है उसको मैं कष्टप्रद मान लेता हूँ, और जो मेरा सच्चा स्वरूप है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता हूँ। इस वर्तमान को ही कि मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, या कि मैं ऑफिसर हूँ, या कि मैं लेमैन हूँ, या कि मैं बिजनेसमैन हूँ, इसी में मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ, इसी में मैं सुख मानने लगता हूँ, जबकि मेरा वास्तविक स्वरूप तो शिव रूप निराकुलता है। वो तो मेरा वास्तविक स्वरूप निराकुल अवस्था है, मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। ऐसे ऐसे मेरे दृष्टि में बहुत से भ्रम हैं, मैं उन सब भ्रम को जिस वक्त निकाल देता हूं तब मेरी दृष्टि निर्मल। रायचंद जी चले जाते थे रास्ते से, उनके और मुमुक्षु उनके साथ चले जाते थे, और अचानक एक व्यक्ति सामने से आता दिखाई पड़ा जिसके एक हाथ में छोटा सा घड़ा था और एक घड़ा सिर पे रखा हुआ था, तो चले जा रहा था। कोई भी देख के पहचान सकता था कि जो सिर पे घड़ा रखा है वो तो छाछ का है, और जो हाथ में थोड़ा सा घड़ा, छोटा घड़ा पकड़े हुए है वो घी का घड़ा होना चाहिए। तो मुमुक्षुओं से रायचंद जी ने पूछा कि बताओ अगर इस आदमी को धक्का लगेगा तो सबसे पहले कौन से घड़े को बचाएगा। बट नेचुरल, बहुत नेचुरल है कि घी का घड़ा बचाएगा, छाछ का घी जाने देगा, क्या फर्क पड़ने वाला है। मुमुक्षु ने कहा कि भाई इतनी सरल सी बात और कैसे पूछ रहे हैं, कोई ना कोई बात होनी चाहिए इसके पीछे। तो रायचंद जी साहब ने कहा कि मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूं कि जब काल का धक्का लगे, जब मरण का समय आवे, तो किसको बचाओगे पहले? शरीर को बचाओगे या भीतर के आत्म स्वरूप को बचाओगे? मुझे यही कहना है। जब हम सामान्य रूप से जो है और घी और छाछ के घड़े में से घी का घड़ा बचा लेते हैं, छाछ का फूट जाने देते हैं, तो ये शरीर भी ऐसा ही छाछ के समान है, और वो जो चेतना की निर्मल अवस्था है वो मेरे लिए घी के समान शुद्ध तत्व है। तुम्हें अपने उस अब अपने रोज के जीवन में देखना पड़ेगा, ये ऐसा थोड़ी मैंने कह दिया आपसे, तो अब रोज के जीवन में देखना पड़ेगा कि शरीर की सास समाज में मेरा ज्यादा वक्त जाया होता है, व्यतीत होता है, या कि मेरे अपने आत्मा की, मेरे अपने चेतना की संभाल में मेरा वक्त ज्यादा लगता है। अगर मेरा वक्त शरीर की संभाल में ज्यादा लगता है तो दृष्टि निर्मल हुई नहीं अभी, हाँ ये कसौटी है। और अगर मेरा मन आत्मा की संभाल में ज्यादा लगता है, आत्मा की चर्चा में ज्यादा लगता है, अपने परिणामों को ठीक ठीक राग द्वेष से बचाने में मेरा मन ज्यादा लगता है, जहां राग द्वेष के उपाय होने लगते वहां से हाथ जोड़ लेता हूं कि भैया मुझे राग द्वेष नहीं करना, ये तो राग द्वेष बढ़ने लगा, वहां से हट जाता हूं, अगर ऐसा है तो समझना की दृष्टि निर्मल हो गई। या कि राग द्वेष के कारण उपस्थित हो जाने पर भी मैं अपने परिणामों को नहीं बिगड़ने देता हूं, तब समझना कि हाँ मेरी दृष्टि निर्मल हो गई। ये तो एक और कठिनाई आज अपने को लगने लगी कि हम तो सोच रहे थे कि श्रद्धा तो हमने कर ली है, सच्चे देव गुरु शास्त्र ही पे तो है हमारी श्रद्धा, और सात तत्व जैसे कहे सो हम वैसे भी सीख पढ़ लाए हैं ग्रंथों में से, और आत्मा की चर्चा में हम रुचि भी लेने लगे हैं, हो गई दृष्टि निर्मल। ये तो बड़ा कठिन आपने बता दिया कि सारा दिन ही ऐसा व्यतीत होता है कि शरीर की सेवा ही होती रहती, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोई 24 घंटे नहीं नहाता है ना, कोई 24 घंटे इत्र फुलेल लगाता है, लेकिन इनडायरेक्ट मेरे पास पैसे जितने ज्यादा होंगे मेरे सुख सुविधा के साधन उतने रहेंगे, इसलिए कमाओ, फुर्सतल नैया, उसके अलावा मेरे कल के लिए अच्छे वस्त्र रखे हैं कि नहीं रखे हैं, आज से मेरे वस्त्रों का इंतजाम होना चाहिए, और चार जोड़ी स्पेयर में होना चाहिए, और वो जो एक डिजाइन देखी थी सुंदर सी वो चाहिए मेरे शरीर को पहनने के लिए, आज मुझे खाने के लिए ये चीजें जरूर से बननी चाहिए, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। अरे सैकड़ों ऐसी बातें हैं जीवन में जिनसे मालूम पड़ता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अब तो डायरेक्ट भी मालूम पड़ने लगा, जितने ब्यूटी पार्लर खुले हैं वो सब डायरेक्ट डिक्लेरेशन है कि आई एम इंडल्स इन द बॉडी, मैं अपने शरीर में बहुत आशक्त हूं, इसलिए मैं दो दो घंटे वहीं पर बैठ रहा हूं, और वे भी हमें आशक्त बना रहे हैं। हाँ एक तरह का नाई का काम है ब्यूटी पार्लर, और क्या है अगर देखा जाए तो। हाँ अब जरा सुपीरियर ढंग से उसको कह देते हैं अपन कि हमारा तो इस तरह का काम है, ये अकेले इंग्लिश, अकेली इंग्लिश आ जाने से जो है, इंग्लिश में नाम रखने से वो थोड़ी चेंज हो जाएगा जो जिस तरह हम व्यवसाय कर रहे हैं। कैसी कैसी चीजें ये सब क्यों हो रही, क्योंकि हम अपने शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं, चेतना का श्रृंगार करने की बात ही नहीं हमारे मन में। जिसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है भैया, वो शरीर के श्रृंगार के अलावा चेतना का भी श्रृंगार करने के लिए वक्त निकालता है। इसलिए आज अपन ने एक बात और समझ ली कि दृष्टि को निर्मल करने के लिए मुझे निरंतर अपने चेतना के विकास की बात मन में आनी चाहिए, शरीर के सौंदर्य की या कि शरीर के पीछे अपना जीवन व्यर्थ करने की बात हमारे मन में अब धीरे धीरे घटती जानी चाहिए, विषय भोगों की सामग्री में अरुचि होती जानी चाहिए। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं। इष्टोपदेश में लिख रहे हैं पूज्यपाद स्वामी के, जैसे जैसे तत्व का बोध होता है, जैसे जैसे आत्मा में रुचि जागृत होती, जैसे जैसे दृष्टि निर्मल होती, वैसे वैसे विषय कषाय से विरक्ति होती जाती हो, जैसे जैसे जितनी जितनी विषय कषाय से विरक्ति होती उतनी ज्यादा जो है दृष्टि निर्मल होती है, आत्मा में रुचि बढ़ती चली जाती है। ये दोनों प्रक्रियाएं चूंकि एक साथ होती हैं इसलिए कसौटी भी है एक दूसरे की, कि देखना विषय कषाय से कितनी विरक्ति हुई और उतना ही हमें तत्व बोध हुआ होगा या उतनी ही दृष्टि निर्मल हुई। असल में मुझे लगता है कि जो जो भी हमारे जीवन में उपद्रव खड़े होते हैं, जो जो भी विपरीतताएं विषमताएं आती हैं, उन सब का कारण अगर कोई है तो वो हमारी दृष्टि की मलिनता है। दृष्टि निर्मल है तो विकृतियां संभव ही नहीं है, विषमताएं संभव नहीं है, समता अपने आप बनी रह सकती है। समता का भंग होना ही हमारी दृष्टि की मलिनता है। हम भूल जाते हैं उस समय कि अरे मेरा स्वभाव ये थोड़ी है, और हम जो है अपने उस राग द्वेष में फिर से अपने आप को लगा देते हैं। अब अपन ने ये भी समझ लिया है कि दृष्टि निर्मल हो जाने के बाद मेरे अंदर कितने सारे गुण आ जाएंगे, मेरे अंदर दृढ़ता आ जाती है, मेरे अंदर साहस आ जाता है, मेरे अंदर तल्लीनता आ जाती, मेरे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, मेरे अंदर प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक आ जाता है। इतना ही नहीं, मैं संसार के भयों से मुक्त हो जाता हूं, मैं भगवान के कहे बताए हुए मार्ग में कोई संदेह नहीं करता हूं, मैं आकांक्षाओं से रहित हो जाता हूं, मैं आकांक्षाएं नहीं करता हूं, ऐसी आकांक्षाएं जो मेरे जीवन का अहित करती हैं, मैं साधु और सज्जन पुरुषों को देख करके घृणा नहीं करता हूं, मैं जिस रास्ते को मैंने सच्चा माना है उसी पे चलता हूं, अन्य दूसरे मार्गों की मैं निंदा प्रशंसा में नहीं पड़ता हूं, अपने रास्ते पर चुपचाप चलता हूं। और कोई अगर रास्ते सच्चे रास्ते पर चलने वाला कहीं कोई भूल कर देता है, कहीं कोई गलती कर देता है, तो मैं उसकी गलती को फैलाता नहीं हूं, मैं उसकी गलती को सुधारने के लिए अवश्य चेष्टा करता हूं। कोई अगर गिर ही जाता है तो मैं उसे जल्दी से उठा के फिर से सच्चे रास्ते पर स्थित कर देता हूं कि भैया कोई बात नहीं, चलने वाला गिर जाता है, कषाय करने का आपने नहीं विचार किया था, त्याग कर दिया था किसी चीज का, लेकिन कर्म के उदय में आप उस त्यागी हुई चीज को ग्रहण करने का भाव कर बैठे हैं, पर ग्रहण नहीं कर लेना, फिर से अपने उस त्याग को बनाए रखो। ऐसा मैं उसे अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित कर देता हूं, और इतना ही नहीं अपने साधर्मी को हृदय से लगाए रखता हूं, उसके सम्मान की रक्षा करता हूं और अपने जीवन को इतना सुंदर बना लेता हूं। बन ही जाता है दृष्टि निर्मल होने पर जीवन इतना सुंदर कि कोई भी देख लेता है तो वो उससे दिशा बोध ले लेता है कि भैया इनकी श्रद्धा तो कैसी अद्भुत है, इनका ज्ञान तो कैसा अद्भुत है, अरे इनका आचरण कितना निर्मल है। ऐसा देख करके उसके अंदर श्रद्धा, उसके अंदर ज्ञान और उसके अंदर आचरण की ललक उत्पन्न हो जाती है। यही तो प्रभावना है। इतनी सब बातें हो गई, अब वो कह रहे हैं त्रिमूढ़ापूर्णम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन तो वो है, दृष्टि की निर्मलता तो वो है जिसमें हम मूढ़ताओं से रहित हो जाते, मूर्ताएं मतलब क्या? सुपरस्टिशंस। मूर्ताएं के मायने हैं अविवेक। अब जिसकी दृष्टि निर्मल हो गई है वो कुछ भी काम करेगा तो विवेक पूर्वक काम करेगा। अपन लोगों के साथ ये मुश्किल है कि हम कहते हैं हमारी तो वह श्रद्धा, हमारी तो भक्ति है, और भक्ति में चाहे जो करो सब माफ है, ऐसा नहीं है। ये भी एक कमी कहलाएगी अपनी। अपन भक्तिवश श्रद्धावश कई ऐसी चीजें कर बैठते हैं जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं होता, जिनमें हमारा अविवेक स्पष्ट झलकता है। तो वो कह रहे हैं कि मूर्ता से रहित, अविवेक से रहित होना चाहिए। सुपरस्टिशंस जिसको अंधविश्वास बोलते हैं, कई चीजें जो कि रूढ़ी से चली आती हैं, जिनको रिचुअल्स कहते हैं, जिनके पीछे पहले कोई ना कोई उनके करने का उद्देश्य था, अब वो उद्देश्य खो गया है, सिर्फ क्रिया दोहराई जा रही है, इसी का नाम तो अविवेक है। परंपराओं को ढोना, जिन परंपराओं से हमें कुछ प्राप्त होने वाला था उन परंपराओं पे चलना तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन परंपराओं को उलट पुलट करके और फिर उन्हीं पर चलते जाना, उनसे आत्मा का कोई कल्याण नहीं हो रहा। फिर भी चूंकि परंपरा है, कैसी कैसी परंपराएं हैं लोक में, बहुत सी परंपराएं प्रचलित हैं जिनमें लोग धर्म मान लेते हैं, हाँ, तो वो कहलाती लोक मूर्ता। लोक में नाना तरह से जो है क्रियाएं करके उसी में धर्म मान लेते हैं। आपगा सागर स्नान मुच्चा सिकतास्म नाम गिरिपातोग्निपातस्य लोक मूढ़म निगत्यते। अरे नदी में नहाएंगे तो धर्म होएगा, पहाड़ पे से नीचे गिर के मर जाएंगे तो धर्म होगा। अब बताओ, अगर हम नदी के किनारे और रेत में और छोटे छोटे पत्थरों को एक के ऊपर एक जमाएंगे, गोल गोल पत्थरों को, तो जितने जमा लेंगे उतने ऊपर स्वर्ग में जाएंगे। अब जी क्या है इनमें, क्या धर्म है? नदी में नहाने से शरीर पवित्र होता है जी तो ठीक है, लेकिन इसमें धर्म होता है और आत्मा पवित्र होती है, ये में कौन सा धर्म है बताइए आप? शरीर में नहाने से तो, नदी में नहाने से शरीर पवित्र होता है कि आत्मा पवित्र हो जाती? एक बार जो है युधिष्ठिर वगैरह सब लोग तीर्थ यात्रा को जा रहे थे, श्री कृष्ण से निवेदन किया कि महाराज आप भी चलो हमारे साथ में तीर्थ यात्रा पे। उन्होंने कहा अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम ऐसा करो जब जाने लगो तो हमसे मिल लेना। जी हो, जब जाने लगेंगे तीर्थ यात्रा पर तो मिल लेंगे। अब जब जाने लगे तो तीर्थ यात्रा पर तो मिलने गए कि भगवान क्या आदेश है, हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। बोले सुनो, हमने एक तुमड़ी मंगाई है, तुमड़ा कहलाता ना
तुमरिया,
हाँ, तो वो मंगवाई है, तुम ऐसा करो हम नहीं जा पा रहे मगर हमारे बत्तल हमारी जगह पे इसको ले जाओ और तुम और जहां जहां तीर्थ में स्नान करो सो इसको भी करवा देना। हमने की बहुत अच्छा, इसमें क्या है, हम आपके नाम से इसको करवा दें। अब बड़ा मजा, वो लोग जहां जहां तीर्थ में स्नान करे सो तुमड़ी खो तो सौ सौ बार करवावे। कैसे? श्री कृष्ण ने दई खुद ही तो एक बार डुबकी लगाए, वो खो सौ सौ बार लगाए और वापस ला करके जब तीर्थ यात्रा पूरी हो गई तो सौंपी उनको कि जी आपकी तुमड़ी। उन्होंने कहा देखो इसने इतनी यात्रा कर ली, इतने तीर्थों का पवित्र जल आ गया है इसके अंदर में, पवित्र हो गई होगी अब तो ये, तुम लोग बैठो आज हम ही रहते खीर खा के जाना। सो उनने बनवाई बढ़िया तुमड़ी की खीर और बढ़िया उसमें बादाम पिस्ता जो भी डाले जाते हैं सब डाले उसमें और खीर बनी भाई, और फिर सबको परोसी गई। अब सब एक गिलास खा के थू थू करे, कोई नहीं खा पाता उसको। तुमने कहा भाई क्यों ना, क्यों थूक रहे, इतनी बढ़िया तो बनाई और भाई तो तुमड़ी आज जो तुम सब राख ले आए सब जगह, तुम तीर्थ में जो है स्नान करा के जिसको ले आए थे वो तो पवित्र हो जाना चाहिए। वो कहते कि नहीं ये तो बहुत कड़वी मालूम पड़ती है। तो कहते कि तीर्थ में स्नान करने से ऊपर की देह तो निर्मल हो सकती लेकिन कड़वापन भीतर का चला जावे कोई जरूरी नहीं है, इसलिए स्नान करने अकेले में धर्म है ऐसा मत मान लेना। अगर करना है स्नान तो रत्नत्रय की त्रिवेणी में स्नान करना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, अकेले इस नदी में स्नान करने में धर्म नहीं मान लेना, यही तो है विचार करने की बात, यही तो है मेरा विवेक, और क्या, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसी बहुत सी मान्यताएं प्रचलित हो जाती हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि राजा की सवारी निकल रही थी, अब बहुत तो सफाई करी, लेकिन उत्तई में एक कुत्ता जो है रास्ता में खराब कर गया। स्वीप होते अब भी सफाई करे वाले कोई हती नहीं। स्वीप जनों ने सोची कि अब जी जो अपन फूल लाए हैं बहुत सारे, सुबह उनको तो राजा को चढ़ा नहीं है, अब इतने गड़बड़ हो जाए, अब भाई सो थोड़े होते डार दे उनने के जी में दिखाए ने। अब जैसे उनने वहां थोड़े फूल डाले, बहुत लोग निकले फूल लाने, उनने सोची भैया भगवान को कौन स्थान आए, धारक जाओ। अब बताओ आप, मैंने मूर्खता की हद होती है, वहां पर इतना बड़ा ढेर लग गया, अब किसी को ये नहीं मालूम कि कौन से देवता है, हैं? तो अब बताइएगा इसको क्या कहेंगे, ऐसे क्या ये देव मूर्ता नहीं कहलाएंगे? जहां जिसका हमें स्वरूप नहीं मालूम है और हम जो है इस तरह अविवेक पूर्वक जहां कहीं भी अपना माथा टेकने लगते हैं, जहां कहीं भी देवता किसी को भी मान लेते हैं, बरोपलिप सासावान राग द्वेष मलिमशा देवता है दुपासीत देवता मूल मुच्चते सग्रंथारंभ हिंसारंभ हिंसा नाम संसारावर्तवर्ती नाम पाखंडी नाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहनम। ये लोक में प्रचलित बहुत सी मान्यताएं जो कि विवेकहीन है, जिसमें हित और अहित का कोई विवेक नहीं है, उनमें धर्म मान लेना, या कि जो राग द्वेष से युक्त हैं उनसे अपने अपने संसार के कार्य बनाने के लिए और याचना करने बैठ जाना कि इनसे मेरा काम सट जाएगा, इस चौतरा पे दीपक जलाए से और नरियल फोड़े से अपनो काम बन जाएगा, सो जा तक नहीं देखी कि भैया कहां हम माथा टेक रहे हैं, जहां तहां माथा टेक देना, उसी को ईश्वर मान लेना, भगवान मान लेना, भैया वीतरागता के अलावा तो भगवत्ता कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती है। कोई हम हमारे लिए आदरणीय हो सकता है, लेकिन पूजनीय तो वीतरागता से ही होता है। इतना ही विवेक हमें रखना चाहिए। और सग्रंथारंभ हिंसारंभ संसारावर्तवर्ती नाम, संसार को बढ़ाने वाली क्रियाओं में जो लगा हुआ है, हिंसा में लगा हुआ है, उसको क्या आप अपना गुरु मान लो? जो स्वयं अभी संसार के प्रपंच में उलझा हुआ है भैया, उसको लौकिक गुरु तो मान सकते हो, जैसे माता पिता को भी अपन गुरु मानते हैं, अपने पढ़ाने वाले शिक्षक को भी गुरु मानते हैं, लेकिन भैया मोक्ष मार्ग में अपने संसार से पार होने के लिए तो उसी को हम गुरु मानेंगे जो संसार से पार होने की प्रक्रिया में लगा है, जो वे संसार ही में उलझा है, राग द्वेष में फंसा है और पांचों प्रकार के पाप में लीन है, कषायवान है, बताइए उसको कैसे हम गुरु मान ले। में तो गुरु किसको मानना है, देव किसको मानना है, लोक में प्रचलित कौन कौन सी मान्यताओं में धर्म मानना है। जैसे कि कोई व्यक्ति अभी भी करते होंगे जाकर के सबसे पहले और गद्दी को नमस्कार करते, और आते समय गद्दी को नमस्कार करते, अपने जो दुकान के सामान इत्यादि है दीपावली इत्यादि पे उसको भी प्रणाम करते, तो क्यों करते भाई? इसके पीछे कोई ना कोई तो बात होगी, तब तो करते हैं। इसमें धर्म है ऐसा नहीं, इससे हमें धर्म सीखना है, यह है उसका भाव। मैं गद्दी को प्रणाम करता हूं, इस गद्दी की साख बनाए रखूंगा, इस गद्दी पर बैठ करके नीति न्याय से कमाऊंगा, इसलिए मैं पैर छू बैठ के मैंने बेईमानी करी हो, लेकिन यह गद्दी तो ईमानदारी की थी, मुझसे क्षमा कर, इसलिए पैर छूना बिल्कुल अलग बात है, और इसलिए पैर छूना कि गद्दी के पैर छूने से संपत्ति बढ़ेगी, ये तो अविवेक है, बताइए आप। मंदिर में पैर छू करके प्रवेश करना ये किस चीज का प्रतीक है? क्योंकि मंदिर अपने आप में देवता है, इसलिए पैर मैंने छुए हैं मंदिर के, देवी के पैर छू लिए, लेकिन देवी पूजना चाहिए, देवी पूजने में धर्म है, ये तो अविवेक कहलाएगा मेरा, इतना ही है और कुछ नहीं। जो चीजें परंपराएं रही उनके पीछे कोई ना कोई भली भावना रही है, उस भावना को भूल गए हैं और क्रियाभर हम दोहराते चले जाते हैं, वो सब अविवेक कहलाएगा, सम्यक दृष्टि को ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे कि उसकी दृष्टि में मलिनता ना आए, अर्थात क्रियाएं जो भी करे वो विवेक पूर्वक करे। जिन क्रियाओं में को करने में हमारा अविवेक ही काम करता है उन क्रियाओं को ना करें, और जिन क्रियाओं को करना चाहिए उनको अवश्य करें पर विवेक पूर्वक करें। अविवेक पूर्वक की गई अच्छी क्रिया भी ठीक नहीं है। हाँ, भगवान की भक्ति भी विवेक से करना चाहिए। एक व्यक्ति को देखा हमने, खड़गासन प्रतिमा है और भगवान की कैसे पूजा करते, पांव दबाते पहले 5-1 मिनट भगवान के मूर्ति के बताओ आप, और फिर बाद में पांव पड़ते, ये क्या है? मूर्ति के पीछे जा करके और उसको पैर पड़ रहे हो। भगवान के पीछे से दर्शन किए ही नहीं जाते, अवज्ञा कहलाती है, न बाजू से किए जाते, बाजू मतलब इस तरफ खिड़की बनी रहती भले ही, पर वहां से दर्शन नहीं ना, पीछे से सम्मुख से। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनमें हम भक्तिवश भूल जाते हैं कि क्या कर रहे हैं। ऐसे अविवेक से भी बचना तब कहलाए कि दृष्टि की निर्मलता। इतनी बातें भी अपन को सीखनी चाहिए कि लोक में सैकड़ों मान्यताएं हैं जिनमें कि लोग धर्म मान लेते हैं। हमने तो वहां देखा था उदयगिरी खंडगिरी में, जब आचार्य महाराज के साथ कलकत्ता से होते हुए उदयगिरी खंडगिरी गए तो वहां पर देखा तो नदी तो सूख गई थी, पानी बहुत पीछे हो गया था, लेकिन उसमें हम लोग वहां बैठ के अपने ध्यान वगैरह करते थे तो जगह जगह देखते थे, वहां पर इतनी एक बटलोई सी रखी, उसमें थोड़ी रेत बिछी, उसके ऊपर एक रखी, ऊपर रेत बिछी, और ये क्या है भैया? कहते ये जो है जब अभी बना दिए हैं लोगों ने ये सब, अब जब नदी चढ़ेगी तो इसमें से जितने जिसके बचे रहेंगे उनकी मान्यता है कि उतने स्वर्ग मिलेंगे उनको, जो उनने जितनी बटैया जमा लेंगे एक के ऊपर एक। अब बताओ, अब अगर उस पे पानी भर जाने के बाद को पांव पड़ जावे तो डूब जाए वो, उसको ऊपर से तो लगेगा कि जैसे पत्थर है और उतना पानी उसमें डूब गया पानी में वो, और नीचे तो जमया है पत्थर एक के ऊपर एक, इतने ऊंचे ऊंचे तक जमा देते थे लोग, और इसमें जो है व्यक्ति उसमें फिसल करके और मरण तक को प्राप्त हो जाता, और उसमें अपन धर्म मान लेते हैं। ऐसे बहुत से लोक में अविवेक के काम प्रचलित हैं, उनको अपन को नहीं फॉलो करना, और इसी तरह से किसी आकांक्षा से कहीं भी जा करके और माथा टेक देना, ये भी देव के बारे में अविवेक है। और रागी देशी और 5 पापों से लिप्त व्यक्ति को मोक्ष मार्ग में गुरु मान लेना, परिग्रही को गुरु मान लेना, कहते ये भी जो है विवेक नहीं है। ऐसी तीनों मूढ़ताओं से रहित जिससे कि अपनी चेतना निर्मल हो वो क्रिया पहले आवश्यक है। शरीर की मलिनता जो है वो मायने नहीं रखती है, चेतना की निर्मलता मायने रखती है। एक और छोटा सा उदाहरण दूं और मेरा समय भी पूरा हो गया। एक नाथ नाम के संत थे उधर महाराष्ट्र में, बड़े प्रसिद्ध हुए। तो वो जब स्नान करने जाया करते थे तो स्नान करने में लोग धर्म मानते हैं, ठीक है, वे भी जो है धर्म मानते थे, स्नान करके आते थे। और क्या हुआ एक दिन कि स्नान करके बाहर आए तो एक वहीं पर जो थोड़ा उपद्रवी किस्म का व्यक्ति था उसने उनके ऊपर कुल्ला कर दिया, थूक दिया कुल्ला मुंह में से पानी। उन्होंने जो है देखा कि अब इसने तो थूक दिया, सो फिर से जा करके और स्नान कर लिया। जैसे ही स्नान करके बाहर निकले उसने फिर से थूक दिया, बड़ी मुश्किल, फिर से चले गए, लेकिन चेहरे पर कोई विषाद नहीं, हाँ कोई इरिटेशन नहीं, कहीं कोई उनके अंदर क्षोभ नहीं था, और फिर से स्नान। कहते हैं उस व्यक्ति ने 100 दफे थूका, इन्होंने 100 दफे नहाया। अब तो जो है उस व्यक्ति को ही मुश्किल पड़ गई, 100वीं दफा थूका तो नहीं बल्कि चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा कि मैंने आपको इतना तंग करने की कोशिश की लेकिन आपके अंदर इतनी क्षमा कहां से आई? मैं भी रोज स्नान करता हूं इस नदी में, मैं भी इसमें धर्म मान के स्नान करता हूं और आप भी स्नान करते हैं, आप में और मेरे स्नान में इतना अंतर क्यों है? तो मालूम क्या जवाब दिया उन्होंने कि मैं तो नदी में स्नान करके शरीर को ही नहीं अपनी चेतना को भी पवित्र करता हूं, और तुम अकेले शरीर को पवित्र करने में ही धर्म मान लेते हो, इतना ही अंतर है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे बाहर से उस नदी में 100 दफे स्नान करने भी मिला और साथ में मेरे अंदर क्रोध नहीं आया, इसलिए मैं भीतर से मलिन होने से बच गया हूं। यही जो है मेरे इसमें, मैं अंतरंग को निर्मल करने में धर्म मानता हूं, अकेले शरीर को पवित्र बनाने में धर्म नहीं मानता हूं। ऐसा उन्होंने उस समय उसे समझाया। तो भैया अपन को भी यही समझना चाहिए कि जो बाह्य चीजें हैं उनकी तरफ, उनमें हम धर्म नहीं माने, अंतरंग के परिणामों की निर्मलता में धर्म माने, तो ही कहता है कि हमारी दृष्टि निर्मल है। इसी भावना के साथ कि ये जो 3 मूलताएं हैं, जो अविवेकपूर्ण हमारी दृष्टि है वो निर्मल हो और हम अपने उस दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त करके जीवन को अच्छा बना सकें, इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर में। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ, शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
कपुशल नदी तट पर तरु तल वर्षा की घड़ियों में
समकार स्वान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में
जग की निधिया